Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Tav Tattvam Na Janami. Kidrishosi Maheshwara, Yadrishosi Mahadeva, Tadrishaya Namo Nam. Yo Asau, Soaham Yajami. Om Shanti. Mandukya Upanishad को आधार मानकर इन दिनों में थोड़ा चिंतन स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर जाने का जो संकल्प है, उसे इस उपनिषद में बतलाए गए उपाय अर्थात ओम का सहारा लेकर, ओम ही अवलंबन है, ओम को अवलंबन मानकर उसी के चिंतन से किस तरह हम परम सत्य का अर्थ है आपका अपना असली स्वरूप, कि जो कुछ हम अपने आप को समझ रहे हैं, ये शरीर, ये नाम, ये रूप, ये सत्य नहीं है, लेकिन आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य है अगर, तो इसका अर्थ है सत्य चित्त आनंद हमारा अपना स्वरूप। इसलिए सत्य के लिए, चेतना के लिए, आनंद के लिए अपने को छोड़कर अगर हम बाहर कहीं उसे ढूंढने लगेंगे तो इनमें से कोई भी हाथ नहीं आएगा। क्यों? जितना हम अपने से हटते चले जाएंगे उतना हम सत्य से दूर होते चले जाएंगे और असत्य में ही हमारा प्रवेश होता रहेगा। इस छोटी सी उपनिषद में मंत्र तो कुल 12 है, लेकिन उन 12 मंत्रों में से उनकी व्याख्या के लिए हम चाहे 12 वर्ष तक भी लगे रहें तो वो हम नहीं कह सकते कि इसकी व्याख्या पूरी हो गई, क्योंकि इसमें अंतहीन की व्याख्या है, जिसका कोई अंत ही नहीं, उसकी व्याख्या का भी कभी कोई अंत नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई टाइम ऐसा आए कि हम कह दें कि अब यहां व्याख्या पूर्ण हो गए। शास्त्र का ये भी एक सिद्धांत है साधक के लिए कि जो आधारभूत बात है अर्थात जो मूल श्रुति है, इस उपनिषद के जो मूल मंत्र है, उनको अगर छोड़कर हम कुछ भी बात करने लगेंगे तो विषय से भटक जाने का डर रहता है। इसलिए मूल श्रुति को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जो भी साधक है और जिन्होंने अपने जीवन में इस चिंतन को अपनाकर अपनी आदतों को बदलने का प्रयत्न करना। स्वभाव से तो सच्चिदानंद है, स्वभाव कभी बदलते नहीं, आदतें बदलती हैं। स्वभाव से कोई भी बुरा नहीं, आदतें बुरी हैं जो हमें एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती। स्वभाव सबके अच्छे हैं, सब चाहते हैं प्रेम से रहें, क्रोध में ना आए, लोभ लालच या झूठ में ना पड़े, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। स्वभाव से हम सत्य हैं तो इसलिए झूठ हमें अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। उसका कारण केवल इतना ही है क्योंकि स्वभावतः आप सत्य स्वरूप हैं, तो जिसका स्वभाव ही सत्य है उसको झूठ कभी पसंद आएगा नहीं। तो आदतें जो होती हैं, जो क्रियाएं हैं हमारी, वो ऐसा लगता है हमें एक दूसरे को कि इसकी क्रिया इसका काम गलत, तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार करना, बदलाव लाना, यही साधना है। स्वभाव तो ठीक ही है, स्वभाव तो सत्य है ही, लेकिन वासनाएं हमारी जब क्रियाओं में ढल जाती हैं तो वो हमें स्वभाव से दूर ले जाती। इसीलिए हर आदमी अपने आप में, जिसको कभी क्रोध आता हो, जिसको कभी लोभ में जो फंसता हो या कुछ भी हो, वो अपने आप भी परेशान होता है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को ही परेशान करे, वो स्वयं भी बैठा हुआ सोचता है कि मुझे सुख नहीं मिल रहा, मैं आराम से नहीं रह रहा, क्योंकि स्वभाव से वो भी झूठ को पसंद नहीं करता। तो स्वभाव का कोई भी किसी झूठ को पसंद नहीं करते, तो हमारी आदतें ठीक रहें, उसका एक सीधा सा उपाय होता है कि स्वभाव से जुड़े रहें। स्वभाव हमारा जो है उसको ना भूलें, अगर इतना भी कर लें तो सारी साधनाएं पूरी हो गई, लेकिन व्यवहार में स्वभाव छूट जाता है। इसीलिए इतने शास्त्र बने कि जो हमें घुमा फिरा के बौद्धिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और भाव की दृष्टि से हमें इधर उधर से घेर कर फिर अपने स्वभाव तक ले आते, ये बतलाते हैं कि नहीं, आपका असली स्वभाव ये है, असली स्वरूप ये है, जिसमें आप फंसे हुए हो वो नहीं। तो इसके जो 12 मंत्र हैं, हम उन मूल मंत्रों का जरा थोड़ा एक बार पाठ करके उनके अर्थ देख लें और फिर उन्हीं की सारी व्याख्या है, फिर हमें बार बार उनको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, अन्यथा इनको पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसमें इसकी प्रथम मंत्र या पहली ऋचा भी कह सकते हैं इनको आप उपनिषदों की, पहली इसकी 26 नंबर के पृष्ठ पर है, 26, जो 26 नंबर का पेज है उसमें इसका पहला मंत्र है। ये जो पुस्तक हमारे पास है इसके आधार पर जो भी पढ़ना जानते हैं, इसमें रुचि रखते हैं, वो पढ़ें, नहीं तो सुने। ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम् भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वं ओंकारेव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतं तदपि ओंकारेव। इस ऋचा का अर्थ केवल इतना ही है, ओम ये अक्षर ही सब कुछ है, ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वं, ओम ये अक्षर ही सब कुछ है, ये जो कुछ भूत भविष्यत और वर्तमान है उसी की व्याख्या है। उसी की व्याख्या का मतलब ओम की ही ये व्याख्या, भूत भविष्य और वर्तमान ये ओम में ही कल्पित है, ओम से ही इनकी उत्पत्ति है, ओम से ही इनकी ओम की ही ये व्याख्या मात्र है। इसलिए ये सब ओंकार ही है, इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओंकार ही है। इसमें उन्होंने ये बतलाया है कि ओम के अतिरिक्त न देश है, न काल है, न वस्तु है। देश काल वस्तु तीनों के तीनों ओम में ही समाये हुए हैं। तीन ही चीजें होती हैं जब हम व्याख्या करते हैं, जिसको संसार कहते हैं देश काल वस्तु। देश कहते हैं स्थान को, काल कहते हैं समय को या परिवर्तन को, वस्तु कहते हैं चीज को, जो भी हो। जैसे हम हैं तो हम वस्तु में आएंगे, देश ये प्रेमपुरी आश्रम है जिसमें बैठे हुए हैं, काल को समय कहते ही हैं। तो जहां कहीं भी होगा, जब भी किसी चीज का वर्णन होगा, देश काल वस्तु में ही होगा। इसके अतिरिक्त किसी चीज को कहा नहीं जा सकता। जिसके बारे में भी कहेंगे वो कोई ना कोई वस्तु होगी। वो जो वस्तु होगी तो किसी न किसी जगह पर होगी और किसी न किसी समय में होगी। इसलिए वस्तु, स्थान और समय ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें से कोई एक ना हो तो दूसरे दो भी नहीं होते। इस तरह से ये तीनों के तीनों वो ये बतला रहे हैं कि ओंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अर्थात ओंकार के चिंतन से ही इनका असली रहस्य समझ आएगा कि ये है क्या। इस तरह से ओंकार, पहली बात तो हमेशा हम ध्यान में रखते ही हैं कि ओंकार एक विशेष ध्वनि है, या ओंकार नाद को भी आम बोलचाल की भाषा में इसको नाद कह लेते हैं। तो ये इसकी पहली श्रुति या पहला इसका मंत्र है। दूसरा मंत्र देखने के लिए आगे 28 पृष्ठ पर है। सर्वम ही एतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सोयम आत्मा चतुष्पाद। अब यहां वो ये कह रहे हैं कि ये सब ब्रह्म ही है। पहले उन्होंने कहा कि ये सब ओंकार ही है, अब कह रहे हैं ये सब ब्रह्म ही है। इसका अर्थ है ब्रह्म और ओंकार का सामने एक ही बात है, इनको दो नहीं मानना, ये वो यहां समझा रहे हैं। और फिर उसके साथ ही ये भी वो कह रहे हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। इसका अर्थ है आत्मा, ब्रह्म और ओंकार, ये तीनों एक ही बात है। किसी भी बात को समझ लो तो वो सभी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे उन्होंने शुरू में कहा कि ये ओम ही सब कुछ है, ये भी आप कह सकते हो कि ये ब्रह्म ही सब कुछ है, और आप ये भी कह सकते हो कि आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा, ब्रह्म और ओम, इन तीनों की एकता बतलाई गई है। यहां वो कह रहे हैं अयम आत्मा ब्रह्म, स्वयं आत्मा चतुष्पाद, और वह जो आत्मा है वो चार अंशों वाला है, चार पाद है उसके, ये यहां पर वो कह रहे हैं इस श्रुति में। यहां पर ये भी बात एक ध्यान में रख लें कि ये जो आत्मा के चार पाद या चार अंश कहे गए हैं, इसको कल्पित आत्मा में चार पाद कल्पित है, सचमुच में नहीं है। देखो ये जब व्यवहार में जो चीज आती है उसको ठीक तरह से आदमी समझ सकता है, जो व्यवहार में नहीं आता उसको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। कल्पित का अर्थ इतना ही होता है कि जैसे एक रुपया है, एक रुपये में चार चवन्नियां हैं और एक रुपये में सौ पैसे हैं, एक रुपए में पांच बीस बीस पैसे के सिक्के हैं और एक रुपए में दस दसियां हैं, दस दस पैसे के सिक्के। अब रुपया तो एक ही है, बातें जब हम इतनी करेंगे कि चार चौनियां भी वही हैं, सौ पैसे भी वही हैं, दस दसियां भी वही हैं और पांच बीस पैसे की सिक्कियां भी वही हैं, दो अठन्नियां भी वही हैं, ऐसा अगर हम कहें और जो लोग मेरी उम्र के हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि ये जो रुपया है इसके 16 आने होते थे हमारे बचपन में और इसके 64 पैसे होते थे। अगर अब ये कहें कि 64 पैसे भी वही हैं जो 100 पैसे हैं तो ये बात समझ में नहीं आएगी। किसी बच्चे को अगर आप समझाना चाहो ये मैथ, ये मैथमेटिक्स किसी बच्चे को समझाओ कि रुपया एक ही है, उसी के 100 पैसे भी हैं, इसी के कभी 64 पैसे भी थे, इसी के 16 आने भी थे, इसी के 180 पाइयां भी थी, तीन पाई का एक पैसा होता था, तो उसी की पाइयां भी हैं, उसी का ये भी है, उसी का वो भी है, घुमा के फिर कहो कि ये एक रुपया ही। और फिर एक रुपए की कोई चीज खरीद के ले आओ आप, एक रुपए का एक अमरूद खरीद लाए और फिर हम कहें वही एक रुपया ये अमरूद भी है, तो ये बात उसकी समझ में नहीं आएगी कि ये सब कैसे हो सकता है। तो ये जितना कुछ भी था ये रुपए में कल्पित है, व्यवहार को चलाने के लिए, रुपए को समझाने के लिए ये उसमें कल्पना की गई है। असल में वो अपने आप में एक मूल्य है जो व्यवहार को चलाता है। ऐसी ही आत्मा में कोई पैर नहीं है लेकिन उसको चतुष्पाद कहा गया, क्योंकि ये जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन चार हिस्सों को आत्मा के चतुष्पाद कह दिया गया, क्योंकि इनके माध्यम से आत्मा को समझना है। यहां पर ही एक बात ये भी ध्यान में रख लें कि पाद पैर को भी कहते हैं, जिससे चलकर कहीं जाया जाए उसको भी पाद कहते हैं और जहां पहुंचा जाए उसको भी पद शब्द से ही कहा जाता है कि अमुक पद को प्राप्त करना है, अमुक जगह पर पहुंचना है। तो पद स्थान को भी कहते हैं, पद पैर चलने को भी कहते हैं, गति को भी कहते हैं। तो इसका अर्थ केवल ये है कि चतुष्पाद जब इसको कहते हैं तो इसका अर्थ है कि उसी के माध्यम से चल के जाना है और उसी तक पहुंचना है। अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये जो हमारी तीन अवस्थाएं हैं, सहारा भी इनका लेना है और फिर तुरीय तक पहुंचना है। तुरीय अवस्था भी आत्मा की ही है, वो किसी और की नहीं है। जागृत की जब हम बात करेंगे वो भी आत्मा को ही समझाने के लिए, सुषुप्ति भी आत्मा को समझाने के लिए और स्वप्न भी आत्मा को समझाने के लिए। ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का सहारा लेकर तुरीय तक पहुंचना है। इसलिए यहां पर पाद शब्द का अर्थ है जिसके माध्यम से पहुंचना है वो भी और जिस तक पहुंचना है वो भी। इसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये साधन के रूप में पाद हैं और तुरीय साध्य के रूप में पाद कि वहां तक पहुंचेंगे। देखो ये साधन, साध्य और इसी में ही फिर अवच्छेदवाद आएगा, आगे हम थोड़ा अगले श्लोकों में अवच्छेदवाद, आभासवाद, प्रतिबिंबवाद, छाया प्रतिछायावाद, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। तो ये जो लोग वेदांत का ठीक से श्रवण किया हुआ हो, अभ्यास बना हुआ हो, तो ये सारे शब्द पारिभाषिक है, उनकी समझ में जल्दी आ जाते हैं। लेकिन ना भी हो इन शब्दों को छोड़कर भी, देखो बात सीधी सी वही है जिसको हर रोज दोहरा लेते हैं कि बात इतनी ही है कि जो नाशवान है उससे अपने मन को हटाना है और जो अविनाशी है उधर को मन को लगाना, बात इतनी ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और उसी के लिए ये सारे साधन मात्र हैं। कैसे भी हम वहां तक पहुंचे, जो बुद्धि प्रधान लोग हैं उनके लिए ये इसमें आसान हो जाता है, एक एक बात को लेकर समझते हुए आगे बढ़ने में थोड़ी परिपक्वता आ जाती है जीवन। तो पाद शब्द स्वयं आत्मा चतुष्पाद ऐसा जो उन्होंने कहा, तो उसका अर्थ ये है कि ये चार स्टेप हैं, जिसमें से तीन तो साधन के रूप में है और चौथा साध्य के रूप में है। और यहां पर ये जो अयम आत्मा ब्रह्म ये शब्द भी आया, ये असल में अथर्ववेद का महावाक्य है। हमारे चार महावाक्य हैं जो वेदांत संप्रदाय में स्वीकार किए गए शंकराचार्य जी द्वारा। उन चार महावाक्यों में से एक महावाक्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसी को प्रज्ञानम ब्रह्म करके कह लेते हैं, बस ये इसका छोटा प्रज्ञानम ब्रह्म, ये पहला महावाक्य। तो प्रज्ञानम ब्रह्म ये सिद्धांत वाक्य है, इसको सिद्धांत बोलते हैं कि ब्रह्म क्या है, प्रज्ञान है, और प्रज्ञान क्या है उसके संबंध में कल थोड़ी चर्चा की ही थी एक दिन। तो प्रज्ञानम ब्रह्म ये सिद्धांत वाक्य है। दूसरा है तत्त्वमसि, ये उपदेश वाक्य है। इसमें तत् और त्वम इन दोनों का की व्याख्या करते हैं कि तत् किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं और ब्रह्म किसको कहते हैं। दोनों की व्याख्या करते हुए फिर दोनों की उपाधियों का निराकरण करते हुए दोनों की एकता बतला देते हैं कि तत्त्वमसि, ये उपदेश वाक्य। अहम आत्मा ब्रह्म ये अभ्यास वाक्य है, और अहम ब्रह्मोस्मि ये अनुभव वाक्य है। इस तरह से ये चार महावाक्य बने हुए हैं। क्रम से जब इनका हम चिंतन करते हैं तो अंतम अनुभूति यही होती है कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, जिसको मैं चाह रहा हूं, वो मैं ही हूं। मैं का मतलब यहां पर केवल मैं से है, अपने नाम रूप को साथ में न जोड़ो, केवल मैं शब्द पर ध्यान दो तो वो इसका अर्थ होगा। क्योंकि हम अभ्यस्त हैं मैं शब्द कहते ही साथ में नाम और रूप को जोड़ लेना। जब नाम और रूप को हम जोड़ लेते हैं तो वो अडल्टरेटेड मैं है, मैं तो है लेकिन वो अब उसमें मिलावट हो गई साथ में नाम और रूप की। और नाम और रूप को छोड़कर अगर मैं का आप चिंतन करेंगे तो वो हमें आत्मा के नजदीक ले जाता है। तो उसी को मैं का असली अर्थ वही है जिसको यहां पर ब्रह्म कह रहे हैं, आत्मा कह रहे हैं, ओम कह रहे हैं। कुल मिलाकर बात वही बनेगी कि अहम ब्रह्मोस्मि, उसमें जो अहम शब्द है, मैं जो शब्द आया, इस मैं को ब्रह्म तक ले जाना। अर्थात मैं के साथ जो लगी हुई और उपाधियां हैं, नाम रूप वासनाएं अंतःकरण कर्मेंद्रियां ज्ञान, इन सब का निराकरण करते हुए कि मैं के शुद्ध रूप का चिंतन करना, तो ये इसका अंतम लक्ष्य होगा। तो यहां पर उन्होंने जो उसके चतुष्पाद कहा, चतुष्पाद का मतलब केवल इतना ही है कि चार ये अवस्थाएं बतलाई गई हैं। तुरी अवस्था तो उसमें से साध्य है, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति उसमें साधन है। तो इसलिए पाद शब्द दोनों के लिए ही आएगा, पांव से चलकर चलना और पद को प्राप्त करना, तुरीय पद तक पहुंचना। आगे तीसरी श्रुति है जागृत स्थानो बहिष् प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूल भुक्वैश्वानरः प्रथमः पादः। अब वो पाद गिनवाने लगे हैं। कहते हैं जागृत अवस्था जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान है, जो बहिष्प्रज्ञा अर्थात बाह्य विषयों को प्रकाशित करने वाला है, सात अंगों वाला, 19 मुखों वाला और स्थूल विषयों का भोगता, वह वैश्वानर पहला पाद है। पहला कदम उन्होंने बतलाया जागृत अवस्था। जागृत अवस्था क्या होती है? जागृत अवस्था वो होती है जब हमारी वृत्तियां बाहर मुखी विषयों को अपना भोग बनाती हैं, जब हमारी वृत्तियां बाहर के विषयों को अपने से हटकर बाहर की चीजों को सोचना, अपने से हटकर जब भी कभी कुछ बाहर की बात सोचेंगे तो वो जागृत अवस्था होगी। ऐसा उन्होंने संक्षेप में इसका यही अर्थ है। इसकी फिर व्याख्या में तो आगे जागृत अवस्था में स्वप्न में पूरा आत्मा को समझाने की बात है। यहां केवल इतना ही है कि जब हमारी वृत्तियां बाहर मुखी हों तो जागृत। उसके लिए उन्होंने सप्तांग और 19 मुख ये सब बनवाया, जिसमें 5 प्राण, 5 कर्मेन्द्रियां, 5 कर्म ज्ञानेन्द्रियां, चतुष अंतःकरण, इनके माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको 19 मुख कहा। और आत्मा को सप्तांग ये कहा। उपनिषदों में बृहदारण्यक उपनिषद में विशेषकर छांदोग्य उपनिषद में भी आत्मा की व्याख्या करते हुए उसके 7 अंग उसकी व्यापकता बतलाई गई है कि द्यौ लोक ही उसका सिर है, सूर्य ही उसकी आंख है, आकाश ही उसका मध्य स्थान है, पृथ्वी ही उसके पांव है, अग्नि ही उसका मुख है, जल ही उसका मूत्र स्थान है। तो इस तरह से ये व्यापकता है, ये बतलाया गया है कि द्यौ लोक से लेकर पृथ्वी तक जो कुछ भी आप देखते हो ये आत्मा में कल्पित है, इनकी कोई असली आत्मा ही है, बाकी ये उसमें कल्पित है, ये रहेंगे नहीं, लेकिन आत्मा हमेशा रहेगी, ये उनका अभिप्राय है। इसलिए इसमें उन्होंने उसको 19 मुख और 7 अंग कहा। ये अभिप्राय आत्मा की व्यापकता से है कि वो बहुत व्यापक है, छोटा सा नहीं। आगे 4वां मंत्र 32वें पेज पृष्ठ पर है। स्वपन स्थानो अंतः प्रज्ञा सप्तांग
सप्तांग
एकोनविंशति मुखः
एकोनविंशति मुखः
प्रविवक्त
भुक्
तैजसो द्वितीयः पादः
तैजसो द्वितीयः पादः।
फिर वो कह रहे हैं स्वपन जिसका स्थान है तथा जो अंतः प्रज्ञा। अंतः प्रज्ञा का मतलब होता है बाहर ना जाकर अपने में ही, स्वपन में बाहर की कोई चीज नहीं होती, आत्मा स्वयं ही अपना विस्तार करता है। जो कुछ भी स्वपन में बनता है, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो हाथी घोड़े हो, चाहे कोई दरिया और समुद्र हो और उसमें हम भी चल रहे हैं, तो मैं अपने आप भी और समुद्र भी और बाकी सब लोग, वो कहीं से आए नहीं है बाहर से, वो मेरे अंदर ही अंदर मैं स्वयं ही बना। मैं का मतलब यहां पर आत्मा से ही है कि वो जो चेतन तत्व है ये उसी का ही विलास है। तो ये अंतः प्रज्ञा, इसके भी वही 19 मुख हैं।